आज का प्रातः क्लास है 31/3/1967। शुक्रवार को रिकॉर्ड चला है, न वो हमसे जुदा होंगे न हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ये गाइड्स क्या दर दिखलाते हैं, स्वर्ग जाने का गेट दिखलाते हैं। भाई ये बात ठीक है ना? देखो अभी नाम इनको दिया है इस बच्चे को, गेटवे यानी रास्ते की तरफ जाना, ये गेट का रास्ता है। वे कहा जाता है रास्ते को और गेट कहा जाता है फाटक को। ये स्वर्ग का फाटक कब खुलता है बच्ची? ये नरक है ना, हेल है ना, हेवन का फाटक कब खोलते हैं? और कौन खोलते हैं? पूछा, क्या बताएंगे? है शरद का फाटक कौन खोलते हैं? है कन्या माताएं खोलती हैं। उनमें भी अव्वल नंबर कौन है? ये दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है, तुम बच्चों को जिनको सदैव खुशी रहती है और ये सभी चित्र वगैरह बनाते हो समझाने के लिए, उनको खुशी रहती है। लिखते हैं गेट वे टू हेवन, हेवन में जाने का रास्ता। ये उसकी प्रदर्शनी है, कि कैसे हेवन में जा सकते हैं। स्वर्ग के द्वार में कैसे जा सकते हैं? ये है नरक का द्वार। किसका द्वार? नरक का क्यों कहा है? नरक इसको कहा जाता है, नारी किसको कहा जाता है? है स्वर्ग का द्वार, नरक का द्वार। स्वर्ग का द्वार कौन खोलते हैं? है और नरक का द्वार कौन खोलते हैं? नारी नहीं बोला, अभी चित्र तो बहुत तुमने बनाए हैं। देखो बाबा ने रात को कहा ना, अच्छा ये कुछ काम का नहीं, ये भी कुछ काम का नहीं। अच्छा बाबा, बस बाबा पूछते हैं बच्चों से, तो इन सब चित्रों में कौन सा चित्र अच्छा है? जिसे हमको गेट का द्वार खोलने में आता है। अच्छा चलो बताओ, ये जो इतने सभी चित्र हैं, इनमें कौन सा एक चित्र है जिस चित्र से हम किसको भी समझा सकें, ये है स्वर्ग में जाने का गेट? दिखलाओ कौन सा चित्र है, नाम बताओ चित्र का। हाँ सब बताओ, मैं प्रश्न पूछता हूँ ना। रात को तुम अजब खाते, मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं, समझे ना। अभी बाबा पूछते हैं कि तुम बताओ ये कौन सा चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। जिससे गेट खुलते हैं, किसी भाई ने कहा सबसे पहला स्वर्ग का रचयिता और उनकी रचना। अच्छा सबसे पहला, अच्छा चलो भाई दूसरा, किसी ने कहा त्रिमूर्ति। अच्छा त्रिमूर्ति, फिर कोई ने कहा गोला, गोला। अरे पर एक और बताओ, ये तो दो हैं। किसी ने कहा बाबा ये एक ही चित्र एक ही है। अच्छा बात सुनो, ये तो ठीक है ये चित्र है, परंतु मुझे गेट बताओ। किसी ने कहा गेट सामने बैठी, जिसने ये बताया इसने अच्छा ये बताया। अरे भाई तुम बताओ बच्ची, ये सभी चित्रों में हमको गेट बताओ, समझे, स्वर्ग में जाने का गेट। इसमें कोई है कोई चित्र गेट बताने का, तुम बताओ। किसी भाई ने कहा बाबा गीता का भगवान कौन है ये समझेंगे तो गेट हो जाएगा। अच्छा ये समझेंगे, चलो भाई तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, कोई भी बताने वाला है जो बता सकते हैं सो हाथ उठा करके बताओ, इसमें क्या है? किसी ने कहा बाबा झाड़ में आ जाते हैं सारे, अच्छा ये झाड़ है, अच्छा बस मन चित्र है, हम चित्रों के लिए रात को इतना तुमको बोला ना और तुम हंसने लगे। शिव बाबा क्या कहते हैं ये सभी फालतू बात? अच्छा ये बोलता है झाड़। किसी ने कहा बाबा सीढ़ी, सीढ़ी अच्छा चलो और भी कोई है तो किसी ने कहा चक्कर, ये कहते हैं चक्कर, अच्छा भाई चक्कर, अच्छा और इसने कहा त्रिमूर्ति, उसने कहा पहले पहले शिव बाबा, शिव बाबा चलो चलो भाई नाम लेकर नोट करते जाओ। मैं आज देखो सबसे पूछता हूँ, अच्छा और बताओ, तो देखो चित्रों की बात निकालता हूँ ना। सिंह कहा जी रात को मैं बोला ये खेल है ना, अच्छा और भी किसी को बताना है? किसी ने कहा बाबा विराट स्वरूप, विराट स्वरूप किसे कहाँ है? ये जो बाबा ने बनाया है मंगाया है अभी, अच्छा भाई चलो विराट स्वरूप और कुछ बताओ। किसी ने कहा बाबा नरक और स्वर्ग का गोला वो कहाँ है? किसी ने कहा उस तरफ। तुम भी यही दो कहते हो? किसी ने कहा नहीं, ये बड़ा चक्कर कहती है, अच्छा वो दो छोटे चक्कर हैं। चलो भाई कोई और भी है? किसी ने कहा बाप का परिचय। मैं पूछता हूँ चित्र मुझे कहीं बताओ जिसमें गेटवे हो, वो मालूम होता है कि भाई ये गेटवे है इस चित्र में। ये बड़ा समझने की बात है, चलो और भी कोई है? तो किसी ने कहा राम राज्य, रावण राज्य, 31-367 की वाणी का दूसरा पेज, राम राज्य और रावण राज्य, अच्छा वो इसमें गेट बताया। बेचारा मौन में रहते हैं एकदम रिटायर लाइफ। किसी ने कहा ना बाबा, किसी ने कहा त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति कहाँ कहा इसने या और किसी ने कहा? किसी ने कहा दीदी ने बोला जो त्रिमूर्ति कहते हैं सो हाथ उठाओ। हाँ त्रिमूर्ति में बहुत हाथ है। अच्छा तो जिसने त्रिमूर्ति कहा तुम भी त्रिमूर्ति के? अच्छा, इसमें हाथ है, ये चक्कर किसने कहा? कोई ने कहा, खन्ना जी ने कहा। खाली एक खन्ना जी, बस एक ही भगवान है। कोई ने कहा, इसमें मैंने कहा। इसने इस एक ही भगवान है, बाकी सब बंदे, केवल इसने राइट कहा। क्यों राइट कहा? देखो, मैं फिर समझाता हूं, तुमको समझाना ही है गेटवे। अब ये चक्कर में ऊपर में देखो, इस तरफ में है नरक का गेट और उस तरफ में है स्वर्ग का गेट। वो बरोबर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं और उसमें तो सभी आसुरी संप्रदाय, और ये भी दिखलाते हैं यहाँ से ये आत्माएं भागती हैं। समझे ना? एक जाती है स्वर्ग में और एक जाती है शांति धाम में। कौन शांति धाम में जाती है, कौन सुख धाम में जाती है? अब ये गेट तो बरोबर ठीक है, गोला है, किसी ने कहा दोनों गोले? एकदम क्लियर। तुम लोगों को सबको समझाना है और इस गोले के ऊपर ही बड़ी समझानी है। यहाँ नरक में देखो कितने आदमी हैं और स्वर्ग में देखो कितने आदमी हैं। ये स्वर्ग में देखो कितना राज है भाई, ये गेट, इस चक्कर का ये जो जगह है, मैं इनसे ये गोला बोला। अच्छा, इस चक्कर में गेट कौन है, दिखलाओ। क्या ये सारा चक्कर गेट है? नहीं, सारा चक्कर भी गेट नहीं है, बस वो गेट पूरा एकदम। देखो, आत्माएं जाती हैं ऊपर में, निकल जाती है ना, और जाएगा गेट स्वर्ग का गेट, वो नरक का गेट। इसमें सुई लगी हुई है ना, और वो सुई शो करती है, सुई देखो सांप से तीखी है। तो वो सुई दिखलाती है कि ये नरक अभी ये स्वर्ग होने का है। तो सबसे अच्छा समझाने का ये है फर्स्ट क्लास गेट वे टू स्वर्ग। क्लियर दिखलाया हुआ है ये सिर्फ। खन्ना राइट यानी विचार की बात है ना। तुम भले विचार करो त्रिमूर्ति क्या गेट क्या है, नहीं गेट क्लियर एकदम। ये गोला दिखलाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और बुद्धि में भी यही रहता है कि अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं, बाकी सभी धर्म वाले शांति धाम हैं। तो देखो ये गेट बिल्कुल अच्छा है। वो आत्माएं जाती हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि वो आत्माएं जाएंगी शांति धाम में। ये सुखधाम में जाएंगी। ये गेट तो बड़ा क्लियर है। और बोलो चित्र में दिखलाओ हमको ऐसा गेट, विचार करो इसमें क्या है। किसी भाई ने कहा बाबा झाड़ में है। नहीं नहीं झाड़ में कुछ भी गेट नहीं है, ये क्लियर बात है समझने की। ये तो क्लियर गेट, हम गेट बोलते हैं, हमको बताओ झाड़ में गेट कहाँ है। और गेट है ही इस गोले में एक्यूरेट, तो गोला ही समझाना चाहिए ना। ये गेटवे तो आए ना, गेटवे बिल्कुल इस तरफ में देखो नरक का द्वार, उस तरफ में स्वर्ग का द्वार, और बरोबर यहाँ से आत्माएं भी जाती हैं। वो एक जाएंगे शांति धाम में और एक जाएंगे सुखधाम में। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार, तो ये तो अंडरस्टूड है कि स्वर्ग के द्वार में तो जो कल्प पहले गए थे स्वर्ग में वो ही जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। बाकी शांति धाम जाएंगे, वो भी द्वार है ना बच्ची। ये फाटक खुलते हैं ना अभी नरक का फाटक, वो बंद होता है, बाकी शांति और सुख का द्वार खुलता है। तो द्वार तो बिल्कुल ये क्लियर हैं। और बाबा ने पूछा ये तो इसमें दिखलाओ गेट वे इस चित्र में कहाँ है, वो तो तुम जानते हो कि परमात्मा गेट खोलते हैं। कौन खोलते हैं? परमात्मा है? परमात्मा गेट खोलते हैं। कौन सा गेट खोलते हैं? है शांति धाम का या सुख धाम का? है सुख धाम का, शांति धाम का नहीं है। मैं वो नहीं पूछा कि कौन गोल गेट खोलते हैं, गेट हमको दिखलाओ इन सभी चित्रों में। ये देखो ये सबसे जास्ती फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास, इसलिए बैजेज भी इनके बनाए हैं। खाली गोला नहीं बना सकते हैं, ये बड़ा है बिल्कुल ही, नहीं तो बाबा को हमेशा दिल होती है। ये जो त्रिमूर्ति है ना, ये दो जो गोले हैं और ये सारा भी गोला, इस सबसे फर्स्ट क्लास। फिर सारा चित्र भी कहे अगर, परंतु बाबा ने पूछा गेट भी दिख लो, गेट वे जो हम अक्षर दिखलाया वो दिखलाओ। तो बाबा क्यों ये कहते हैं, समझाते हैं, सबको ले जाओ यहाँ, इनसे बहुत क्लियर होता है कि देखो ये है नरक और ये है स्वर्ग, और देखो इसमें कितने आदमी हैं, कितने अनेक प्रकार के हैं। इकतीस तीन सड़सठ की वाणी का तीसरा पेज पांचवी लाइन, उसमें देखो एक प्रकार के हैं ना, तो जरूर जाते भी हैं, यानी विनाश भी तो होता है ना, तो सभी जाते हैं। इस विनाश में तो जाने का है ना, सबको जाना है, और तुम जानते भी हो कि बरोबर गेट खुलता है। हम जाएगा शांति धाम होकर के, फिर हम जाएगा। अभी ये ज्ञान है ना, हम शांति धाम होकर के फिर सुख धाम जाएगा। हम जानते हैं कि बाकी जो भी है सब शांति धाम चले जाएंगे। अभी समझानी देखो कितनी अच्छी है, किसको भी बैठ करके समझाओ बिल्कुल इजी समझानी है। भाई ये गेट है, ये नरक और ये स्वर्ग। अभी नरक से स्वर्ग का गुजार तो सब नहीं जाएंगे। देखो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य भाग है, बाकी देखो खाली खाली। वहां आगे हम लिखते थे बाकी ये सभी शांति धाम चले जाएंगे। तो देखो ये गेट है शांति धाम जाने का और सुख धाम जाने का। देखो तो बुद्धि में रहना होता है ना, ये बात तो बुद्धि में रहनी है ना हम बच्चों को, कि अभी अभी गेट्स खुलते हैं, हम स्वर्ग का द्वार जाने के लिए पवित्र बन रहे हैं, लायक बन रहे हैं, क्योंकि ये तो राजधानी है ना। उस राजधानी में जितना हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अभी की बात है, बड़े नवाब हो जाएंगे, रुलेंगे, पिलेंगे, खाएंगे, हगेंगे, सोएंगे तो जरूर खराब। भाई ठीक है ना, ये तो सबसे अच्छा चित्र है, यानी ये तो विचार करने की बात है, समझा ना। तो बाबा ने बताया, एक ने ठीक बताया, तो बाबा को रात को ये ख्याल में आया, आ करके साहब को कहा था, नहीं नहीं ये तो अगर कहेंगे इस चित्र की भी क्या दरकार है, ये तो बुद्धि से काम लेना चाहिए कि बाप जब आते हैं और आए करके नई दुनिया स्थापन करते हैं तो नई दुनिया में तो भारत ही होता है, बाकी आत्माएं साथ चली जाएंगी शांति धाम। तो इस बात को समझाने में वास्तव में चित्र की भी दरकार नहीं, ये तो बुद्धि से काम लेना होता है। तो चित्र को समझ करके फिर बुद्धि से काम लिया जाता है, फिर कोई चित्र नहीं उठाया जाता। तो तुम बच्चों को भी देखो, सारा दिन समझाने की कौन सी बात सबसे अच्छी है जिससे इनको हम क्लियर समझाए सभी, ये ठीक है। देखो कुंभकर्णों को सींग है, वो मुर्दों को हम पिलाते हैं, वो नहीं उठते हैं, वो जो हम लिखते हैं गेट वे अभी, ये अक्षर बहुत अच्छा है, अंग्रेजी अक्षर है, कोई कोई बड़े शोभनीक है, और हिंदी में तो बहुत है टिक टिक, सारी टिक टिक, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज कोई है ही नहीं। रांग लैंग्वेज है, समझा ना, हिंदी लैंग्वेज रांग है। क्यों? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज वाले अपन को क्या कहलाते हैं, है? हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदू हिंदी, यहाँ तो अभी अनेक लैंग्वेजेस हैं, हिंदी कोई लैंग्वेज नहीं है, हिंदी अक्षर ही निकला है हिंदुस्तान से, और ये हिंदुस्तान तो है नहीं, है हिंदुस्तान नहीं है, है फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं है, हिंदू का अर्थ क्या है, हिंसा को दूर करने वाला स्थान हिंदुस्तान, और बड़े से बड़ी हिंसा बताई काम विकार, तो हिंदुस्तान है, है? यहाँ काम विकार की हिंसा को दूर करने का स्थान कहे, इसका नाम असल में राइटवे में नाम है भारत। क्यों? क्योंकि यही एक देश है जहां पवित्रता की लाइट, जहां ज्ञान की लाइट, मैं रहने वाले कोई हैं जो सदैव रहते हैं। कभी भी भारत वा इंग्लैंड है तो इनका नाम फिराए देंगे क्या? ये तो गलियों वलियों का नाम फिराया है, घर भर का नाम फिराया जाता है, बाकी सारे के सारे खंड का नाम थोड़े ही फिराया जाता। तो ये नाम को फिराए देना, ये है उल्लुओं का काम। ये कैसे? बाबा उल्लू किसे कहते हैं? है उल्लू माने बाबा उल्लू चमगादड़ को कह देते हैं, जिसका सर नीचे लटकता रहता है और पांव ऊपर जाते हैं। मना कि जो पांच तत्वों की दुनिया है, पंचभूतों की दुनिया, उस पंचभूतों की दुनिया में जिन पंचभूतों से ये देह बनती है, शरीर बनता है, उस देह की दुनिया में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, उन्होंने ये नाम रख दिया है, भारत का नाम फिराई दिया है। क्या रख दिया? हिंदुस्तान। हिंसा को दूर करने वालों का स्थान। अरे भारत, महाभारत, और महाभारत की लड़ाई, इसको भारत कहा जाता है ना? किसको? महाभारत नाम किसके आधार पर पड़ा? भारत के आधार पर महाभारत नाम पड़ा। कहे वंदे मातरम तो भी भारत याद आता है। क्यों? क्योंकि एक भारत देश ही है जो मातृ देश गाया हुआ है, इसलिए वंदे मातरम प्रसिद्ध है। कोई हिंदुस्तान थोड़े ही याद है, भारत देश हमारा। ये हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के कारण हिंदी लैंग्वेज, नहीं तो हिंदी लैंग्वेज है नहीं कोई धर्म की। धर्म पिता के नाम पर किसका नाम पड़ता है? धर्म का नाम पड़ता है, धर्मखंड का नाम पड़ता है। और जबकि धर्म ही नहीं है तो लैंग्वेज भी नहीं है। हर एक की धर्म की लैंग्वेज है। इन हिंदुस्तान का धर्म ही नहीं है, हिंदुओं का धर्म ही नहीं है, लैंग्वेज वरी का ही की हिंदी रख दिए, धर्म भी हिंदू और लैंग्वेज भी हिंदू। हिंदू कहो, हिंदी कहो, है ना? हिंदू से हिंदी लैंग्वेज हो गई ना। तो उसको हिंदी कर दिया। बाकी लैंग्वेज कोई राइट थोड़ी ही है ना। तो सब अनराइटियस हो गया। हिंदुस्तान अनराइटियस, हिंदी अनराइटियस, हिंदू धर्म अनराइटियस। जो जो भी है सब अनराइटियस। ये अनराइटियस का फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? संगम युग से, जिसे ब्रॉड ड्रामा का शूटिंग काल कहें। तो शूटिंग काल में किसने नाम रखा हिंदू? है कि हम हिंदू हैं, है हिंसा को दूर करने वाले हैं और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। किसकी तरफ इशारा किया? शूटिंग पीरियड में किसकी तरफ इशारा किया कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और साथ हिंसा को बढ़ाने वाले हैं? कौन सब है?
नीचे वाले कहते हैं एडवांस वाले तो बढ़ाने वाले।
माना एडवांस में जो भी ब्राह्मण अपन को बताते हैं वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। क्यों?
उनका ये मानना
है, उनका ये मानना है, असलियत नहीं है। नहीं, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी दुनिया की बीज रूप आत्माएं है ना? नहीं है। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, हैं? तो ज्यादातर विधर्मी और विदेशी धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं या स्वदेशी हैं? है स्वधर्मी हैं, ज्यादातर विदेशी धर्मों की बीज रूप हैं, ज्यादातर विधर्मियों की बीज रूप हैं, और अंश मात्र स्वदेशी सूर्यवंशी हैं। तो जिन्होंने कहा अपन को कि हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, किस आधार पर कहा है? एडवांस पार्टी में जो हुजूम है दूसरे दूसरे धर्मों का, बीज रूप आत्माओं का, उस संख्या उनकी ज्यादा है या थोड़ी है? है? ज्यादा संख्या है, और हिंसा को दूर करने वालों की संख्या है बहुत थोड़ी है। उनमें भी जिन सूर्यवंशियों की संख्या बहुत थोड़ी है, वो भी रुद्रमाला का अव्वल नंबर ग्रुप है, या बाद वाले नंबर का है? अव्वल नंबर का ग्रुप है, और अव्वल नंबर के ग्रुप में भी जो बड़ा कहा जाता है वो शास्त्र में प्रसिद्ध है। क्या है? है? क्या है? हिंसा को बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है? है? घटाने वाला। कैसे? वो तो शास्त्र में विष पाई गया हुआ है। विष तो पर स्त्री या पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। तो जिस ग्रुप में जो बड़ा कहा जाता है वो ही हिंसक हुआ या अहिंसक हुआ? है? हिंसक हुआ ना। विचार की हिंसा बड़ा कहा जाने वाला बढ़ाए रहा है या घटाए रहा है? बढ़ाए रहा है। तो नियम तो यही है, ब्रह्म वाक्य भी है। क्या? जो कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख, छोटे करेंगे बड़ा मुखिया कहा जाता है, परिवार का राजा। चलो वसुधैव कुटुंबकम जिसे कहा जाता है उसका बड़ा, जो विश्व पिता कहा जाता है वो ही हिंसा करने वाला हो। हिंसा किसे कहा जाता है? हिंसा माने, हिंसा माने दुखदाई, दुख देने वाला। अहिंसक मना जो दुख न दे सुख दे दुख न दे। पर स्त्री पर पुरुष का भोग करे तो जिनको पराई कहा उनके दिल को दुख नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? तो हिंदू कह दिया गलत कह दिया क्या है? नहीं कहा। क्यों? हिंदू किसको कह दिया है?
उन्होंने अपने को हिंदू कह दिया।
किन्होंने कहा हिंदू? हम हिंदू हैं और ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। वो समझते हैं जो अपन की बढ़ाई करते हैं। कि और सब ब्राह्मणों की दुनिया में हिंसा को बढ़ाने वाले हैं और हम जो बी के हैं अपनी माँ का नाम जानते हैं, बाप का नाम नहीं जानते, वो हिंसा को दूर करने वाले। तो हिंसा को दूर करने वाले माने हिंदू हो गए। बाकी जिनका मुखिया और उस मुखिया को फॉलो करने वाले वो हिंसा को बढ़ाने वाले हो गए। तो फाउंडेशन पड़ता है यहाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, वो माँ को पहचानते हैं या बाप को भी पहचानते हैं? है, माँ को पहचानते हैं, बाप को जानते ही नहीं। तो बच्चा बुद्धि है, वो नहीं जानते, क्योंकि देहभान में है या आत्माभिमान में है? कैसे? देह का कर्म देखा, देह की कर्म इंद्रियों को देखा या मन बुद्धि रूपी आत्मा को देखा? है, जिनको हिंसक समझते हैं, हिंसा करने वाला समझते हैं, उनका मुखिया उन्हें देह के रूप में दिखाई देता है या आत्मा के रूप में दिखाई देता है? देह के रूप में दिखाई देता है। उस देह में वो मन बुद्धि रूपी आत्मा दिखाई नहीं देती। जो आत्मा देह के परे स्टेज में रहती है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया गया है, संपन्न स्टेज की यादगार है। क्या है संपन्न स्टेज है? बल कर्म इंद्रियों से कोई कर्म करो, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहना है। जो बच्चा बुद्धि है इस बात की गहराई को नहीं जानते, इसलिए अपन को हिंदू कहते हैं और अपनी लैंग्वेज को हिंदी कहते हैं। और जहाँ रहते हैं उनकी बुद्धि कहाँ रहती है? मन बुद्धि से कहाँ रहते हैं? हिंदुओं का स्थान कौन सा है? जो अपन को हिंदू कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और बाकी एडवांस सारा का सारा ब्राह्मणों का संगठन हिंसा को बढ़ाने वाला है, तो वो अपन को मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं। लेकिन कर्म इंद्रियां हिंसा को बढ़ाती हैं या घटाती हैं? है? बढ़ाती हैं। ये द्वैतवादी द्वापर युग है। जब से इस दुनिया में रजो प्रधानता आती है, जो रजोगुण है वो कर्मेंद्रियों के कर्म में आसक्त कराता है। नहीं तो देवताओं को कोई कर्म करने की कर्मेंद्रियों से दरकार नहीं। देवताएं अपना भरण पोषण करने के लिए कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करते हैं क्या? करते हैं? नहीं, फिर क्या करते हैं? अरे कुछ करते हैं कि निठल्ले हैं? हैं? क्या करते हैं? आत्म की स्थिति में रहते हैं। तो इस राज को वो नहीं जानते, इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं गलत फहमी के कारण। और समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के रहवासी हैं और इन हिंदुओं का स्थान कौन सा है? है? अरे जो भी बीके हैं अपन को ब्रह्मा कुमार कहते हैं, अम्मा कुमार बताते हैं, बाप का नाम नहीं जानते। वो कौन सी अम्मा को जानते हैं? ब्रह्मा को जानते हैं। ब्रह्मा माता का रूप है, पैदा किससे होते हैं? है? माता से पैदा होते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि हम देह हैं या आत्मा हैं। क्या है? है? क्या है? आत्मा मानते हैं, जानते हैं? नहीं जानते, वो अपन को देह समझते हैं। देह समझने के कारण माँ से जो पहली पहली पैदाइश होती है वो देह की होती है कि आत्मा की होती है? देह की पैदाइश होती है, और देह का बीज डालने वाला देह अभिमानी होगा या आत्मा अभिमानी होगा? देह अभिमानी। उस देह में जो आत्मा बाद में प्रवेश करती है, उस आत्मा के बारे में जानकारी नहीं, कि वो आत्मा कौन है और उस आत्मा को माँ के गर्भ से जन्म देने वाला कौन है। देहधारी है या निराकारी है? देह रूपी पिंड जो माता के गर्भ में तैयार होता है, उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है, उस आत्मा को प्रवेश कराने वाला कौन है? देह रूपी पिंड को बीज डालने वाला तो देह अभिमानी बाप है, लेकिन उस देह में जो आत्मा प्रवेश होती है, उस आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? है? हाँ जी, तो निराकारी बाप को नहीं जानते। वो समझते हैं कि निराकारी बाप सदा कहाँ का रहवासी है, तो वो सदैव परमधाम का वासी है। तो माता के गर्भ में जो पिंड निर्जीव तैयार होता है, पांच तत्वों का पुतला, उसमें आत्मा को कौन जन्म देकर भेजेगा? है? कौन भेजेगा? निराकारी बाप भेजता है, वो बीज डालता है आत्मा का। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, वो तो कहता है स्वयं कि मैं तो इस चक्कर में ही नहीं आता हूँ, कौन सा चक्कर? जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। तो 84 के चक्र में आत्माओं को प्रवेश कराने का निमित्त कौन है? है? हाँ, आत्माओं का बाप तो कहता है कि न मैं चक्कर में आता हूँ न कोई गिनती में आता हूँ, मैं तो तुरिया हूँ, तुम बच्चे ही नंबर बार चक्कर में आते हो और तुम बच्चे ही नंबर लेते हो, तो नंबर लेने वालों में मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी नंबर लेने वाले हैं उनमें अब्बल नंबर कौन, कोई है या नहीं है? तो जो अब्बल नंबर है वही अल्लाह अब्बल दीन गाया हुआ है। अव्वल नंबर धर्म का प्रणेता है और जो अव्वल नंबर धर्म है वो सारे संसार को अपने में समा के रखेगा या कोई को समाएगा कोई को नहीं समाएगा? है, सारे संसार को अपने में समा कर रखता है। इसलिए वो सागर है, सागर में ये धरणी भी समाई हुई होती है। कौन से टाइम पर है? महाविनाश के टाइम पर ये सारी ही धरणी जलमयी हो जाती है, तो कहाँ समा जाती? सागर में समा जाती है। तो वो सागर बाप है और धरणी माता है। जो धरणी है वो धारणा करने वाली है, काहे की धारणा, किस चीज की धारण करने वाली? जो भी सत्व है बाप में, के सत्व को ही सत्य कहा जाता है, उस सत्य को सच्चाई से धारण करने वाली सती कही जाती है। तो भारतीय शास्त्रों में वो सती विख्यात है। कौन है? पार्वती के पूर्व जन्म का नाम सती, सत्य को धारण करने वाली भारत माता कही जाती है। जो भारत माता कही जाती है धरणी है ना, वो धरणी किसकी गोद में समाई हुई है? है, बाप की गोद में समाई हुई है। तो आदिकर्ता कौन हुआ? है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप तो अकर्ता है या करता है? है, अकर्ता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आज मुरली में बताया, गेटवे टू हेवन, गेटवे टू स्वर्ग, गेटवे टू नर्क, स्वर्ग और नरक दोनों का रचयिता कौन? शिव बाबा नरक का रचयिता है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। उसे सिर्फ शिव नहीं कहेंगे, उसका नाम शिव नहीं है। शिव किसका नाम है? मेरी बिंदी का नाम शिव है। जब कोई साकार में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, क्या? शिव बाबा। और जिसमें प्रवेश करते हैं प्रवेश करने का कोई न कोई मकसद तो होगा ना, है? प्रवेश करने का मकसद है, क्या मकसद है? नई सृष्टि की रचना करना। मनुष्य सृष्टि रूपी नया परिवार बनाना। तो दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, वो तो सामान्य बाप होते हैं, सर्वसामान्य। और ये तो है, ये तो परम पुरुष कहा जाता है। तो जो परम पुरुष है उस पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए, सर्वसामान्य माता चाहिए या परम परे से परे स्टेज में रहने वाली माता चाहिए? कैसी माता चाहिए? परे से परे स्टेज में रहने वाली माता। तो वो माता बाप के मुकाबले एंटी सेक्स चाहिए या समान सेक्स वाली चाहिए? है? क्या चाहिए? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है? फीमेल चाहिए। पुरुष है परम पुरुष, तो वो परम माता चाहिए। पुरुष में और पुरुष की अपोजिट प्रकृति में क्या अंतर है? अरे माता में और पिता में कोई खास अंतर है या नहीं है? है? जो पिता है बलवान है या माता बलवान है? पिता बलवान है। क्यों? है सूक्ष्म बलवान है या बड़ा रूप बलवान है? है सूक्ष्म बलवान है। और जो जितना बड़ा है उतना कमजोर है। तो प्रकृति में जो पांच तत्व हैं वो बड़े रूप में होते हैं और पुरुष सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो गीता में भी बोला है अणोणियान सम्मन स्मरित है। जो भी अनुरूप निराकारी आत्माएं हैं उन सब के बीच प्राणी मात्र के बीच सबते जाति सूक्ष्म कौन है, है? है? परम पुरुष। तो परम पुरुष को परे ते परे स्टेज में रहने वाली जड़त्वमयी बुद्धि वाली माता चाहिए या बुद्धिमान चाहिए, है? क्या चाहिए, है? बुद्धिमान चाहिए, माता चाहिए या आप समान चाहिए, माता चाहिए। तो जिसमें प्रवेश करते हैं काम निकालने के लिए, अधीन रखने के लिए, उसका नाम देते हैं ब्रह्मा, भले तन पुरुष का हो। जैसे दादा लेखराज तन पुरुष का था परंतु नाम क्या दिया, ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा तो नंबर बार बहुत है, कोई अब्बल नंबर भी ब्रह्मा होता है जो शास्त्र में गाया हुआ है, क्या है, परम ब्रह्म गाया हुआ है। वो परम ब्रह्म ब्रह्मा नामधारियों में जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं उनके बीच में परम पाठधारी है, और वो परम पाठधारी राइटियस होगा या अनराइटियस होगा, है? राइटियस है। उसके बाद जो माताएं बनती हैं वो नंबर वार राइटियस या अनराइटियस हो सकती है। जो भारत में परंपरा है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, और दूसरी तीसरी चौथी लेते हैं। तो जो पहली पत्नी होती है, पहली माता होती है, उससे जिन बच्चों का जन्म होता है उनको ज्यादा मान मर्तबा मिलता है, या बाद वाली पत्नियों से पैदा हुए बच्चों को ज्यादा मिलता है, है? ये परंपरा कहाँ से पड़ी, संगम युग से ये परंपरा पड़ी। जो गीता में लिखा है कि दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं, सात्व के स्टेज में मेरा ही अनुगमन करते हैं। तो बताया कि जो है ही राइटियस, 100% राइटियस, वो राइटियस के द्वारा जिस धर्म की स्थापना होगी वो धर्म राइटियस ही होगा 100%, या अनराइटियस होगा, है? राइटियस ही होता है। इसके लिए बोला गया कि वो सच खाना, सच पहनना, सच फलाना, और उसके अपोजिशन में जो भी है, माँ झूठ खाना, झूठ पहनना, इन दोनों बातों में फर्क हो जाता है ना बच्चे। अभी देखो सच की तो महिमा कर दी, गीता में भी महिमा है, क्या, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, इस संसार में जो सत्य है चारों युगों में तीनों कालों में उसका कभी अभाव नहीं होता है। जो भारत के शास्त्रों में भी गाया हुआ है, एक है या अनेक है? हैं? एक ही है, जिसका आदि कोई नहीं जानता, अंत कोई नहीं जानता। शास्त्रों में कथा दिखाई दिए कि जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस सत्य का जो यादगार रूप शिवलिंग है, ब्रह्मा को कहा उसका आदि देखो और विष्णु को कहा नीचे जाकर उसका अंत देखो, तो दोनों को ना आदि मिला और ना अंत मिला। तो वो कौन है? अरे कोई पत्थर है ग्रेनाइट का, या कोई चैतन्य आत्मा है? चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन पत्थर बुद्धियों के संग के रंग में आकर इस दुनिया में ग्रेनाइट पत्थर जैसी बन जाती। इसलिए इस सत्व प्रधानता का रूप स्वर्णलिंग बनाते, सत्व सामान्य स्टेज का रूप रजत लिंग बनाते, ताम्र लिंग बनाते और तामसी स्टेज का यादगार है लौह लिंग बनाते। पत्थर का लिंग कहो मना, वो लिंग है या बिंदु है? वो चैतन्य जो परम पुरुष है, परे से परे चैतन्य स्टेज में रहने वाली आत्मा है, इसका आधार लेती। पत्थर बुद्धि का आधार लेती या पारस बुद्धि का आधार लेती? पत्थर बुद्धि का आधार लेती, जिसे कहा जाता है रथ, बड़ा रूप, और उस रथ में बैठने वाली आत्मा छोटा रूप। इसलिए गीता में कहा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यवधीयते। ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, धर्म की युद्ध भूमि है, कर्म की युद्ध भूमि है, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में जब मैं आता हूं तो अनेक प्रकार के धर्म हो जाते हैं, उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्म कांड चल पड़ते हैं। उन कर्म कांडों को लेकर सभी धर्मावलंबी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनसा के संकल्पों की लड़ाई, दृष्टि की लड़ाई, वाचा की लड़ाई, कर्म इंद्रियों की लड़ाई, लड़ाई क्यों होती है? सत्य और असत्य का झगड़ा होता है। और इस दुनिया में कोई सत्य बचता है? है नहीं? सत्य तो बचता है लेकिन कोई को देखने में नहीं आता। क्योंकि सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। जो सत्य है, हीरो पार्टधारी है, वो हीरा भी डूब जाता है। कहे में है, देह अभिमान की धूल में डूब जाता है। स्वयं को भी भूल जाता है और इतना पत्थर बुद्धि बन जाता है कि जिससे जाति पत्थर बुद्धि कोई भी प्राणी नहीं। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को बार बार कहना पड़ता है, अमृत छोड़ बिख काय को खावे। किससे कहता है? है? किससे कहता है? उसी से कहता जिसके लिए बोला, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। एक के ज्ञानी बनने से, कैसा ज्ञानी है? बाप समान ज्ञानी, आप समान ज्ञानी, बाप तो त्रिकालदर्शी और बाप का विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबर बार क्या बनाकर जाता हूं? आप समान बनाकर जाता हूं। आप समान माने? मैं निराकारी हूं सदैव, तीनों काल में निराकारी, साकार तामसी सृष्टि में आता हूं, झूठ खंड में आता हूं, तामसी शरीर में आता हूं, पतितम कामी कांटे में आता हूं, तो भी मेरे को कोई संग का रंग नहीं लगता। यहां तक कि इस दुनिया में जो भी ग्रेट फादर्स आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उन सबको संग का रंग लगता है, मेरे को संग का रंग नहीं लगता। लेकिन मेरा विरुद्ध है कि जब मैं आता हूं तो नंबर वार तुम बच्चों को, इन बच्चों को नहीं, किनको है? हाँ, जो अपन को हिंदू समझते हैं। यज्ञ का फाउंडेशन जब पड़ा था तब भी यही झगड़ा था, क्या धोबी घाट की बात को लेकर के झगड़ा हुआ? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने क्या समझा है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में ही उनके मुख से बोल दिया, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर हो बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। उनको कितना समझाते थे कि विकार में मत जाओ, तो भी नहीं माना। अब पद भ्रष्ट हो गए। किसकी मेंटेलिटी में था ये बातें? किस आत्मा की मेंटेलिटी में बोल रही थी है? ब्रह्मा के अंदर ये बातें बोल रही। तो ब्रह्मा ने ही नहीं जाना, तो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले बच्चे जानेंगे है? नहीं जान सकते। इसलिए गलत फहमी में आकर अपन को समझ लिया हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं, ब्रह्मा ने भी समझ लिया और ब्रह्मा बच्चों ने भी, जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले थे उन्होंने भी समझ लिया हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू है और बाकी दुनिया में सारे हिंसा को बढ़ाने वाले। किस कारण हुआ ऐसा? किस कारण हुआ? कारण कि जब सुप्रीम सोल बाप ने दादा लेख राज में प्रवेश किया तो क्या नाम रखा? ब्रह्मा। अर्थ है बड़ी माँ। जो माँ होती है वो बाप के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमती होती है या बुद्धिहीन होती है? बुद्धिहीन होती है। देह अभिमानी होती है। देह का होना माताओं कन्याओं को जल्दी छोड़ता नहीं, इसलिए बोला कि माताएं इस देह के ऊपर, देह के संबंधियों के ऊपर आसक्ति छोड़ दें तो समझो माताएं विजयी हो गई। ये मोह जो तुलसीदास ने भी बोला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब प्रकार की बीमारियों का मूल है, व्याधियों का मूल है मोह। किसके प्रति मोह? देह के प्रति मोह, देह के पदार्थों के प्रति मोह, देह के संबंधियों के प्रति मोह। और ये मोह माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा होता है। और माताओं की भी माता कौन है? माताओं की माता भी के कहेंगे ब्रह्मा, दादा ले सर। लेकिन दादा लेखराज को जिसने परिचय कराया, साक्षात्कारों का अर्थ बताया, अर्थ बताकर ज्ञान का बीजारोपण किया, वो प्रैक्टिकल में कोई था या नहीं था? जो था वो उनका बाप था, जिसने कोई माता से जन्म लिया। किसने है? जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दिया, वो आत्मा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की आत्मा को परिचय देने वाली बनी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाली बनी। ब्रह्मा ने अपने पार्ट का साक्षात्कार कर लिया, बुद्धि के आधार पर या भावना के आधार पर? साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार भावना का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। माताओं में भावना ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा भावना होती है? माताओं में ज्यादा भावना होती है। तो भावना का भाड़ा उन्हें पक्का पक्का मिल गया, पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया कि सफेद पोष का साक्षात्कार माना मैं ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, बुद्धि में पक्का बैठ गया मैं ही चार भुजाओं वाला ब्रह्म विष्णु हूं। और नई दुनिया में जाकर के मुझे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है और ब्राह्मणों को ये निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि औरों ने तो साक्षात्कार किया ही नहीं था। तो ब्रह्मा को पक्का निश्चय बैठ गया भावना के आधार पर। और ब्रह्मा से भी पहले कोई और माता थी? यज्ञ में कोई माता हुई या नहीं हुई? हैं? हाँ, जिसमें पहले पहले शिव बाप ने प्रवेश किया और प्रवेश करके नाम दिया परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म से सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणकों का जन्म होता है, वो रुद्रमाला के मणके सब जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार के आधार पर पुरुष होते हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के होते हैं? पुरुष स्वभाव संस्कार के। और बाप बाप बनकर आता है, जिस चोले में प्रवेश करता है वो चोला भी काम निकालने के लिए नाम देता है परम ब्रह्म। माने बड़े से बड़ी माता, तो माता की क्या कमजोरी बताई है? है? मोह। किस चीज से मोह? देह से मोह। माता का मोह देह में धरा रहता है। तो देह रूप है या नहीं है? है, और देह का ही आधार लेता है परम पुरुष। तन का आधार लेता है या मन बुद्धि का आधार लेता है? तन को कंट्रोल करता है या आत्मा को कंट्रोल करता है? है, हम बच्चों की आत्मा को आधीन बनाया है या स्वाधीन बनाया है? आत्मा को कंट्रोल नहीं करता, वो जिस तन में आता है उस तन को कंट्रोल करता है, तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और वो आत्मा जो सो पत्थर बुद्धि मनुष्य में काम करती है, वो आत्मा जड़त्वमयी हो जाती है, इसलिए पत्थर बुद्धि हो जाती है। इस बात में पत्थर बुद्धि, अरे अमृत छोड़ बिख काये को खावे, ये बात बुद्धि में बैठती है? है? नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? अरे कोई कारण होगा कि बिना कारण के? है? क्या कारण? है?
पुरुष का स्वभाव होता है।
वो कारण है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, और बीज में दोनों ही गुण हैं। माता का भी सार है और पिता का भी सार है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं वो सदा काल नीचे रहती हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, पांच तत्वों के संघात पर रहती हैं या परे चली जाती है? है? संगात में रहती है। इस सच रूपी रंगमंच से परे नहीं जाती है? परे जाती है। और जड़ तत्व जो पांच जड़ तत्व हैं वो नीचे ही रहते हैं या ऊपर जाते हैं? वो नीचे ही रहते। भले आत्मा नंबर बार जड़त्वमयी है, जो सबसे जास्ती जड़त्वमयी पेड़ पौधे हैं वो नीचे की स्टेज में रहेंगे, लेकिन जाना सबको है। तो बताओ जब महाविनाश होगा महामृत्यु होगी, क्योंकि सामान्य मौत तो होती ही रहती है, तो महामृत्यु के टाइम पर जो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि होगा वो नीचे रहेगा या ऊपर रह जाएगा? वो नीचे रहेगा। और हर आत्मा में तीनों काल का पार्ट उदा हुआ है। जो गीता में बताया प्रकटे क्रियमाणा ने गुणई कर्माण सर्वश, प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना स्वभाव संस्कार भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का। लेकिन सच्ची रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माएं जब पार्टी बजाने के लिए आती हैं, तो पंचभूतों के संसर्ग संपर्क में आ जाती है। और अहंकार से भर जाती है। हर मनुष्य आत्मा में ये अहंकार भरा हुआ है। घड़ी घड़ी अहंकार पकड़ लेता है। तो दुनिया के जितने भी अहंकारी हैं, प्राणी मात्र मनुष्य मात्र की बात छोड़ो, सबका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा है? तो वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। महामृत्यु के समय भी उसमें ये अहंकार रहता है, जिसे देह अहंकार कहा जाता है। और ये देह अहंकार इस सच्ची रूपी रंगमंच पर उस आत्मा में कहां से आरंभ होता है? क्या सतयुग में था है? नहीं, तो कहां से आरंभ हुआ है? द्वापर में भी कब से? द्वापर तपो प्रधान तो अंत में बनता है, आदि में तो द्वापर भी सात्विक होता है। दुनिया की हर चीज आदि में सात्विक और अंत में तामसी बनती है। द्वापर युग भी ऐसे ही है। इसलिए द्वापर के आदि में जो यादगार शिवलिंग था, वो यादगार भी सात्विक यादगार थी या आज की तरह पत्थर का लिंग था? है सात्विक यादगार थी। और नाम था सोमनाथ। सोम माने क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा को नाथ डालने वाला, बैल को क्या डाला जाता है? नाथ डाली जाती है। जो यादगार शिव के मंदिर में बैल दिखाया जाता है, जहां जलाधारी बनी होती है वहां नाली की ओर मुख करके दिखाया जाता है। किसके सन्मुख है? नाली के सन्मुख। शिवलिंग की ओर उन्मुख नहीं, शिवलिंग तो बाद में, पहले किसकी ओर उन्मुख? नाली की ओर उन्मुख। इसलिए बैल का पार्ट दिखाया गया। ये बैल का जो पार्ट है वो दिखाते हैं, वासुकी के नाग के रूप में भी दिखाते हैं। जो वासुकी नाग गले से पकड़े बैठा है मनुष्य शशि के बाप को, शंकर के गले में क्या दिखाते हैं? वासुकी नाग दिखाते हैं। वासुकी नाग शब्द से ही मालूम पड़ता है सबसे जास्ती काम विकार कौन से प्राणी में होता है? नाग में। और नाम है वासुकी, माने किसका बच्चा हुआ? वसु का बच्चा वासुकी, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। और दूसरे नाम रूप से भी उसे भगवान का रूप दे दिया है। शास्त्रों में कृष्ण के बाप का नाम क्या बताते हैं? है वासुदेव नहीं, वसुदेव। बाप का नाम वहां भी वसु और उसका बच्चा वासुदेव। ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी, वसु धन संपत्ति को कहा जाता है, है ज्ञान की धन संपत्ति। तो ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव कौन हुआ? है? कौन हुआ? है शिव बाबा। शिव बाबा है वसुदेव। और जिसे हम शिव बाबा कहते हैं वो शिव बाबा का पुरुषार्थी रूप वासुकी के देवांग से जकड़ा हुआ है। उसको दिखाते हैं शंकर बैल पर सवार है या बैल शंकर पर सवार है? है बैल शंकर पर सवार है। तो जिस पर जो सवारी करेगा वो अपने स्वभाव संस्कार के तरह से चलाएगा या नहीं चलाएगा? चलाता है। इसलिए दिखाया कि त्रेता युग जब समाप्त होता है तो त्रेता के अंत में जब द्वैतवादी युग आता है तो विराट रूप धारण करने वाला विष्णु दो तरफ बट जाता है। दो टांगे, विराट रूप की दो टांगे, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। संसार में दो प्रकार के धर्म खास देखने में आते हैं। भारतीय धर्म और विदेशी धर्म, दाईं ओर के धर्म और बाईं ओर के धर्म। दाई ओर के जो भी धर्म है पवित्रता को पालन करने वाले, बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, जो भी हो, और विदेशी धर्म, सारे ही अपवित्रता को बढ़ाने वाले। बाम मार्गी धर्म, बाया हाथ गंदगी की सफाई करने के लिए होता है, गंदा काम बाएं हाथ से करते हैं, और अच्छे काम दान धर्म दाएं हाथ से करते हैं। तो देखो ये द्वैतवादी द्वापर युग आरंभ होता है विराट पुरुष का, और विराट रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। उसमें देवताएं भी दिखाते हैं, असुर भी दिखाते हैं, मनुष्य भी दिखाते हैं, ऋषि मुनि भी दिखाते हैं, प्राणी मात्र उसमें आ जाते हैं। तो वो विराट रूप का द्वैतवादी स्वरूप जब आरंभ होता है तो द्वापर युग कहा जाता है। तो उसका फाउंडेशन डालने वाला कौन है? कैसे? शिव बाबा कैसे है? हाँ वो तो ठीक है, वो तो बाद की बात, जब नरक की दुनिया बने तब कहेंगे कि नरक की दुनिया मेरी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है। लेकिन नरक बनने के आरंभ में निमित्त कौन है? धर्मपिताएं, धर्मपिताएं ग्रेट फादर्स हैं या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? ग्रेट फादर्स हैं, लेकिन बाबा नहीं, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और ग्रैंडफादर शिव नहीं हो सकता, क्योंकि शिव तो निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप, उसका कोई दूसरा संबंध है ही नहीं। बाबा आदि अनेक प्रकार के संबंध तब बनते हैं जब वो साकार मनुष्य में प्रवेश करता है। तो जिस साकार मनुष्य में प्रवेश करता है उसका नाम देता है क्या है? ब्रह्मा, परम ब्रह्म। क्यों? मनुष्य सृष्टि का परम पिता क्यों नहीं? परे ते परे पार्ट बजाने वाली माता क्यों? माता में विशेष स्वभाव संस्कार क्या बताया है? मोह। कैसे मोह? देह से मोह, देह के संबंधियों से मोह। देह के जो भी भ्रांति हैं, देह से संबंध रखने वाले उन सब में मोह, और जिसमें मोह होता है, जिसमें अटैचमेंट होता है, उसके संग का रंग लगता है या नहीं लगता है, है? तो देखो, ये भारत देश है, मातृ देश क्यों कहा गया? क्योंकि भारत देश का मूल आधार स्वयं कौन? परम ब्रह्म। तो जब परम ब्रह्म में ही ये कमजोरी है कि संग के रंग में आ जाता है, तो उसके बाद जो भी आत्माएं पाठधारी हैं उन सब में ये कमजोरी होगी या नहीं होगी? होती है। और माता का ये स्वभाव है, चाहे जैसा बच्चा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान हो, उस बच्चे को भी अपनी गोद में रखेगी या धक्का मार के बाहर निकाल देगी? गोद में रखेगी। इसलिए एक भारत देश ही है। इस भारत देश में जो भी विदेशी आए, उन विदेशियों को अपने अंदर समा के रखा या भगा दिया? समाया। परंतु क्या अंग्रेजों को नहीं भगाया? है? पहले रखा, ठीक है रखा, फिर रखे ना। कोई माँ का अपने बच्चे को दुरु देख करके भगाती है क्या? फिर ये गायन है। जब मंदिर में जाते हैं तो हाथ जो कर शिव के मंदिर के सामने, शिवलिंग के सामने क्या बोलते हैं? तुम्हें व माता क्या पिता? तुम्हें पहले माता, फिर बाद में पिता। माता से बच्चा अगर नहीं सुधरता है तो फिर माता क्या करती है? है? बाप को सौंप देती है। पहले माता, पहले गांधी जी क्यों है? गरम दल क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार गरम दल को आगे क्यों नहीं रखा गया? नरम माता को क्यों आगे रख दिया? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेहद का गांधी कौन? ब्रह्मा। गांधी भी चाहते थे राम राज्य हो, राम राज्य आएगा। ब्रह्मा भी क्या चाहते थे? राम राज्य आएगा। फिर क्या हुआ है? और ही रावण राज्य आ गया। तो जब माँ के संभालने से नहीं संभलता है तब मजबूरी में आकर के माँ बच्चे को बाप को सौंप देती है। यही हुआ प्रैक्टिकल। ब्रह्मा के बच्चे, दादा लेखराज के बच्चे जब अति करने लगे, मुंह पकड़ने लगे, कैसे? नहीं बाबा, आप माउंट आबू में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं बैठे हैं। बार बार बाबा एक ही बात बोलते रहे, दिल्ली में तुम सबको जाना है, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही। और बच्चे क्या करने लगे हैं? बाप का मुंह पकड़ने लगे। तो जब देख लिया, जान लिया कि ये बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, तो आखिरी अंतिम संदेश दिया क्या? तीसरा रथ, उस रथ की आवाज को चारों तरफ भेजना है, चारों ओर प्रत्यक्ष करना है, रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। तो समझ में आ गया, जैसे शरीर छोड़ने से एक दो साल पहले शरीर रहते भी समझ में आया था कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम गलत रखा गया। क्या नाम रखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम रखना चाहिए। और तुम बच्चों को भी अपने नाम बी के से पहले प्रजापिता जरूर लगाना चाहिए। एक दो साल के बाद शरीर छूट गया, वो आत्मा और ही ज्यादा देहंकार की गहराइयों में चली गई, सूक्ष्म देह में चली गई या उभर गई है, और ही सूक्ष्म देह के अहंकार में चली गई। यहां तक के जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, और सुप्रीम टीचर के रूप में व्याख्याएं मिली, तो जब तक व्याख्या मिलती थी बात समझ में आती थी। संग के रंग में आकर के आत्मा निराकारी स्टेज धारण करती थी, और जैसे ही बच्चों की याद आई, गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती। देहंकार में आ जाती, पूर्व जन्म का शरीर याद आ जाता, माता अपने देह अहंकार को भूल नहीं पाती। ये तो मजबूरी की बात है, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, कि कोई बच्चे हैं जो षष्ठ रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष के चक्र में 50 साल अपना शरीर ही धारण नहीं करते। किस बच्चे की तरफ इशारा? ब्रह्मा की तरफ इशारा। ये 50 साल पूरे होने जाते हैं, होने आते हैं, और ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर त्यागती रहती है, बीज रूपी स्टेज में रहने वाले बीज बाप के संग के रंग में आते आते बीज ही बन जाती है, है? अभी 18 आया कहाँ? तीसरे रथ को कब से पहचाना? पहले पहचाना क्या है? नहीं पहचाना? पहले बुद्धि में क्या था कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, गीता का भगवान साकार, कौन सी आत्मा को समझते थे? हैं? स्वयं को समझते थे। अभी बाद में समझ में आया, जबकि वो 50 साल का टाइम भी पूरा होने लाया, 69 में शरीर छोड़ा, 69 में 50 साल जोड़ दो, कौन सा सन आता है? 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा, 68 पूरा करके उसे 50 साल जोड़ दो, है? यही टाइम आ गया ना, तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर भी त्यागती जाती है। 69-70 में जब आते थे तो आवाज से बोलते थे, बाद में सूक्ष्म शरीर और ही सूक्ष्म होता गया, आवाज भी धीमी होती गई, गोसे से बोलने लगे। अभी अंत में तो अति सूक्ष्म आवाज हो गई, और आवाज से परे। इसलिए कहा जाता है और चित्रों में दिखाया भी जाता है, पहले ये चित्र नहीं निकले थे। कौन से चित्र? कि शिव बाबा की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, चित्र देखा है? हाँ जी। तो वो कृष्ण बच्चा कौन है? कौन सी आत्मा? और वो बाप कौन है? बाबा के रूप में सफेद दाढ़ी मूछ वाला है, कौन सी आत्मा? हाँ, शिव बाबा, जो शास्त्रों में भी दिखाते हैं, वासुदेव कृष्ण को यमुना नदी से पार कराने वाला कौन था? है? वसुदेव उसका बाप था। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति, देव माने देने वाला। तो कृष्ण बच्चे को ज्ञान की धन संपत्ति प्रैक्टिकल में देने वाला कौन है? प्रैक्टिकल में कोई देने वाला है या नहीं? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। परब्रह्म तो माता है, पिता नहीं। पार ले जाने वाली माता है या पिता है? पार ले जाने वाली तो शास्त्रों में नवैया दिखाते हैं, है? हल्की फुल्की कमजोर नवैया है या पावरफुल है? है? कैसी नवैया है? पीपल का पत्ता, क्या खासियत होती है पीपल के पत्ते में? पीपल पात सरिस मन डोला, कौन से वृक्ष का पत्ता है जो थोड़ा सा हल्का सा हवा का झोंका आता है और पत्ता जोर से हिलने लग पड़ता है? पीपल का पत्ता। इसे नाम भी देते हैं ब्रह्मदेव, कहते हैं भूत प्रेतों का उस पर वास होता है। मैंने कृष्ण की आत्मा कभी ऐसा पार्ट बजाया होगा तो दिखाते हैं कि पीपल के वृक्ष पर भूत प्रेतों का वास होता है, इसलिए पीपल का वृक्ष जब सूख जाए तो उसकी लकड़ी को घर में जलाना नहीं चाहिए। भूत प्रेतों का आक्रमण हो जाएगा, ऐसी भक्ति मार्ग में मान्यता है अभी भी। ये सारी बातें भक्ति मार्ग में कहां से आई है? संगम युग से आई। संगम युग में वो कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि के पार्ट बजाती है और उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि जो सतयुग का कृष्ण है पहला पत्ता सृष्टि का, वो मेरा गाय नहीं है। शास्त्र में भक्ति मार्ग में कहाँ का गायन है? है संगम युग का गायन है। संगम युग में मुझे आत्मा ने बीज रूपी स्टेज जब धारण कर ली और बाप समान बिंदु बन गया तब बाप का बच्चा बना, बाप की गोद में खेलने वाला। और वो बाप की गोद में खेलने वाला बच्चा अभी 2017 में जो 40 साल पहले बाप का संपूर्णता वर्ष मनाया गया था, 40 साल पूरे हुए, वो संपूर्णता वर्ष जो मनाया गया वो मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर मनाया गया या शरीर की कर्मेंद्रियों के आधार पर मनाया गया है? शारीरिक रूप से संपूर्ण, इंद्रियों के आधार पर संपूर्ण या मन बुद्धि के संकल्पों में संपूर्ण? संकल्प आत्मा के अंदर कोई भी विकारी संकल्प ठहर नहीं सकेंगे। अपनी आत्मा का ऐसा साक्षात्कार हो जाता है, श्रेष्ठ संकल्प, सेवा के संकल्प, नई दुनिया की प्लानिंग के संकल्प, मनन चिंतन मंथन के संकल्प, या तो बीच रूप स्थित नो संकल्प पैटाल। वो बीज रूप स्टेज जब पहली बार बनती है तो तारीख भी अव्यक्तवाणी में घोषणा कर दी, याद है? 5 दिसंबर मना, संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। 69 में शरीर छोड़ा तो 69 में ही दूसरी आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। इसलिए अशोक की लाट हो, नोटों पर 3 शेरों का चित्र हो, किसकी यादगार है? त्रिमूर्ति की यादगार है। तीनों ही शेर इस संसार रूपी जंगल में अपने अपने निश्चित टाइम पर ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारते हैं कि दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला कोई भी पंडित विद्वान आचार्य नहीं हो सकता। पीछे पीछे कितना भी ग्लानिंग करते हैं, सामने आकर कोई भी मुकाबला नहीं करेगा। भले पहला शेर ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मा की यादगार भी नहीं दिखाई जाती, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनाए जाते, कोई याद भी नहीं करता है, ऐसा शेर उसका भी आमने सामने आकर कोई ने नहीं मुकाबला किया। कोई ने किया क्या है? नहीं किया। उसके बाद जो विष्णु और शंकर दो आत्माएं शेर के रूप में दिखाई जाती हैं, जिनकी पूजा भी होती है, जिनके मंदिर भी बनते हैं, जिनकी मूर्तियां भी होती हैं, और जो कार्य संपन्न करके भी दिखाते हैं। नहीं तो भारत में ऐसे माना जाता है जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, या तो कार्य को उठाती ही नहीं है, अगर उठाती है तो उस काम को पूरा करके छोड़ती है। सफलता ही पूजी जाती है, असफलता नहीं पूजी जाती है। दुनिया के सारे काम जिनके पीछे सफलता ही जिम्मेवार है, वो सारे कार्य कौन सी ताकत से होते हैं? पवित्रता की ताकत से। तो पवित्रता की ताकत वो दो मूर्तियों के संपन्न होने पर आती है। एक है बाप के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, तुम बच्चे नंबरवार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों के द्वारा करके दिखाए। तो जो बाप का प्रैक्टिकल पार्ट है वो मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्टधारी के रूप में गाया जाता है, और वो ही हीरो है जो भक्ति मार्ग की सात्य की यादगार में सोमनाथ मंदिर में हीरा के रूप में दिखाया गया है। वो हीरा पत्थर होता है या पारस होता है? पत्थर होता है। और शिव है? शिव की आत्मा पत्थर बुद्धि होती है कभी? क्या कभी नहीं होती। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो पत्थर बुद्धि होता है, जिसको पारस बुद्धि बनाता है संग के रंग से। तो बताया कि वो राइटियस रूप है जो गाया हुआ है, चित्र में भी दिखाया है, गेट वे टू हेवन। और गेट वे टू क्या? हेल भी है। हेल कैसे? गेट वे टू हेवन कैसे? मुसलमानों में अंग्रेजों में अभी भी एक कथा चल रही है, नहीं याद आया क्या? अल्लाह मियाँ ने जन्नत बनाई, हेवनली गॉड फादर है ना, हेवन ही रचेगा ना, तो जन्नत बनाई, तो जन्नत में ताकीद कर दिया आदम और हवा को, इस जन्नत का जो बीज का फल है वो नहीं खाना। तो भक्ति मार्ग में मुसलमानों ने समझ लिया वो गंदुम, गेहूं को समझ लिया जिसका शेप स्त्री के आकार का होता है, वास्तव में वो बात नहीं थी, असली बात थी जो बाड़ी है वो शरीर रूपी बाड़ी है, शरीर रूपी बगीचा है, विराट बगीचे के बीच का फल जो कामेंद्रियां हैं उनका भोग नहीं भोगना है। तो बड़े लंबे समय के बाद वो आदम हव्वा इस बात को भूल गए जो अल्लाह मियां ने उनको ताकीद किया था, और कौन चलायमान हो गया है? हव्वा चलायमान हो गया। माने पहले देवान किसमें आया है? हव्वा में आया। और जब वो स्त्री रूपिणी प्रकृति हाव भाव दिखाती है तो पुरुष चलायमान हो जाता है, संग के रंग में आ जाता है। ये कमजोरी है पुरुष की। पुरुष की कमजोरी कौन है? है स्त्री कमजोरी है। भले वो प्लस है, बिजली का प्लग होता है ना, मेल और फीमेल, तो वो प्लस है, धनात्मक है, जिस धनात्मक को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? है कुमार धनात्मक है या ऋणात्मक है? है धनात्मक है, उनको वरदान क्या मिला है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, नई दुनिया की स्थापना करना चाहें, आमादा होना हो जाएं तो नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं, और चाहे तो सारी दुनिया का ध्वंस भी कर सकते। जो अभी अव्यक्तवाणी के संदेश में लास्ट संदेश में इशारा दिया गुलजार दंदी दादी के द्वारा, क्या युवाएं प्राण बनाया है? क्या प्राण बनाया है?
है
परमात्मा बाह्म फोड़ने का प्लान बनाया मना ब्रह्मा की रची हुई तीसरी सृष्टि एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि को भी ध्वंस करने का प्लान बनाया है परमात्मा बम। बम फूटता है तो क्या होता है, है? धुआं निकल जाता है बस है ऐसी दुर्गंध फैलती है तीक्ष्ण कि जो सूंघता है वो खलास हो जाता है। वो है स्थूल बम और ये है परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े से बड़ा बम है। डीके वाले बच्चा बुद्धि है या प्लानिंग बुद्धि राजदार बच्चे हैं? बच्चा बुद्धि है। बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? वो कैसे बनाएंगे? इसलिए इशारा दिया जिसने भी ये प्लान बनाया है, माने कोई एक है उन्हें युवाओं का मुखिया जिसने ये परमात्मा बम फोड़ने का प्लान बनाया है, बोला उसने नहीं बनाया है, बाप ने टचिंग कराया है। क्या बाप ने टचिंग कराया है? वो समझता है मैंने बनाया है, नहीं तो बाप बाप ही होता है और बच्चा बच्चा ही होता है। खुद को बाप समझ बैठे हैं। लास्ट संदेश सुना है? हाँ तो बताया, तो वो बच्चा एडवांस पार्टी का बच्चा होगा या बेसिक ब्राह्मणों में बच्चा होगा? एडवांस पार्टी का बच्चा। और इशारा दे दिया कोई को विरोधी पार्ट बजाते हुए 40 साल, कोई को 30 साल, कोई को 20 साल हो गए। उस लास्ट संदेश में क्या बता दिया? क्या तीन बच्चों का पर्दाफाश कर दिया? कोई बच्चा 40 साल से विरोधी है, एडवांस पार्टी को कितने साल हो गए? है 40 साल हो गए, आज से ही विरोधी। ब्रह्म वाक्य भी है, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी निकली, आदि में भी निकली थी। जब ब्रह्मा की पहली बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई ओम मंडली, तो स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। अभी भी ऐसे ही है, विनाशकारियों का भी पार्ट एडवांस के आदि में ही। बताओ वो विनाशकारी कौन से धर्म के होंगे? बस कहते हैं ब्रह्मा के चार पुत्र हुए, संसार रूपी रंगमंच पर चार मुख्य धर्म है, चार धर्मों की चार बीज रूपात्मय हैं। उनमें से एक है अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की प्रणेता आत्मा, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की प्रणेता, और बाकी तीन है जो विदेशी धर्म है, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो तीनों ही धर्मों के बीज एडवांस के आदि में कुमार थे, चारों ही कुमार थे या तीन कुमार थे? हैं? चारों ही कुमार थे, सभी को वरदान मिला हुआ था। क्या? कुमार जो चाहे सो कर सकते। इतना बड़ी पावर का वरदान और कोई वरदान हो ही नहीं सकता। वो तीन आत्माएं, दो विदेशी और एक स्वदेशी, कौन सा? बौद्ध धर्म। भारतीय धर्म है फिर भी विदेशियों के मुकाबले कमजोर है या पावरफुल है? पावरफुल है। इस दुनिया में द्वैतवादी दुनिया जब शुरू होती है तो इस्लामियों ने ज्यादा लंबे समय तक सारी दुनिया में राज किया या बौद्धियों ने किया? इस्लामियों ने लंबे समय तक राज्य किया, क्रिश्चियंस तो अभी 200-300 वर्ष के अंदर आए। तो सबसे जाति विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में कौन सा धर्म पावरफुल है? है इस्लामी। बौद्धियों में प्योरिटी ज्यादा होती है या इस्लामियों में ज्यादा प्योरिटी होती है? बौद्धियों में ज्यादा प्योरिटी होती है, फिर भी वो दिखा दे कि प्योरिटी थी, काम की प्योरिटी थी, असलियत थी या नकली प्योरिटी थी? है नकली थी। भले उनका बड़े से बड़ा गुण देखा, अहिंसा परमो धर्म, जो हिंदुओं में भी मान्यता है, जहां दया तहां धर्म है। अहिंसा माने दया। कहां पृथ्वीराज की दया? क्या किया है? बार बार माफ कर दिया, दया कर दी। और कहां बौद्धियों की अहिंसा? क्या किया है? विदेशियों का आक्रमण हुआ, हाथ खड़े कर दिए, हम हिंसा नहीं करेंगे, बीवी बार बच्चों को अधीन कर दिया, जन्म जन्मांतर के लिए अधीन हो गई वो आत्माएं। जो अपने परिवार के भांतियों की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ऊपर अहिंसक नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए हिंसा के रास्ते पर डाल दिया, वो दुनिया में दूसरों को कैसे बचाएगा हिंसा से। तो ऐसी आत्माएं जो अंदर से कमजोर हैं, वो विदेशियों के प्रभाव में जल्दी आ गई। सब बौद्धि विदेशियों से भीख मांग रहे हैं या बिना भीख के चल रहे हैं? भीख मांग के चलते हैं। तो देखो ये सच्चाई है या झूठ है? सच्चाई है। भीख मांगना ये सच्चाई नहीं है। जो सच्चा होता है उसे कभी जीवन में भीख मांगने की दरकार नहीं है। तो तुम बच्चों का है सच खाना, सच पहनना, सच फलाना फलाना, सब कुछ सच। और उनका है सब सब झूठ। तो देखो इन दोनों बातों में फर्क है। कहां तुम सच खंड स्थापन करने वाले और कहां वो झूठ खंड स्थापन करने वाले। ओम शांति।